21 जनवरी 1937 पेज 2 की मध्यादि में बात चल रही थी। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव ही निराकार परमात्मा हूँ। ब्रह्मा प्लान अनुसार अभी शरीर लिया है तो नाम बदल जाता है। मेरा नाम शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है और तुम्हारा भी नाम बदला है। तुम्हारा नाम कब नाम बदला है? तुम्हारा भी नाम बदला है। तुम्हारा माने किसका है? यदि कि आज में कोई बच्चे थे जिनका नाम बदला था, नाम देते थे, संदेशियां नाम लाती थी, तो बोला तुम्हारा भी नाम बदला है, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे? कितने तो भागंती हो गए जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, फिर बाद में नाम भी नहीं रखा। इसलिए अब नाम ही नहीं बदलते, क्योंकि जिनके नाम रखे अच्छे अच्छे वो सब भागंती हो गए, तो किसी पर भी विश्वास नहीं रहा है। क्या नाम तो रख दिए इतने अच्छे और काम कुछ भी करके दिखाया नहीं, तो विश्वास उड़ गया। तो क्या करना चाहिए? पहले काम देखना चाहिए तब नाम रखना चाहिए, या पहले नाम रख दिया जाए फिर काम देखा जाए? पहले पार्ट देखा जाए कि आत्मा कैसा कैसा पार्ट बजाती है, उस पार्ट के अनुसार फिर उनके नाम रखे जाने चाहिए। माया भौतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं बदलते। किसका रख करके किसका न रखे तो भी ठीक नहीं है। कहते तो सब हैं बाबा हम अब आपके बन चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे बनते थोड़े ही है। बहुत है जो वारस बनने के राज को भी समझते नहीं है कि हम बाप का कैसे बने। बिरला ही कोई समझते हैं बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। क्या मिलने तो ढेर आते हैं लेकिन उनमें वारिस क्वालिटी बहुत थोड़ी है। विजयमाला में भी नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे भी समझते हैं हम वारिस हैं, परंतु वास्तव में वो वारस है नहीं। ये राज समझना भी मुश्किल है। कोई कोई को बाबा समझाते हैं वारिस बनना किसको कहा जाता है? भगवान को कोई वारिस बनावे तो फिर मिल्कियत देनी पड़े। वारिस को क्या करना पड़ता है? वारिस को जो भी जीवन भर की कमाई की हुई है या बाप दादे से मिली हुई कमाई है वो सब इसको अर्पण करनी पड़ती है। वारिसदार को अर्पण करनी पड़ती है। तो भगवान फिर वारिस बनावे, माला कितने थोड़ों की बनती है ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं हो। बाबा से पूछता कोई नहीं, क्यों?
डर लगता है।
डर लगता है ये बाबा भी तो बता सकते हैं, तो वो बाबा भी बता सकता है। ये क्या बात? ये बाबा और वो बाबा क्या है?
ब्रह्मा बाबा
भी बता सकते हैं और
आने वाला,
और वो बाबा भी बता सकते हैं।
वो
माना जो पास्ट में हो चुका, वो उसकी तरफ इशारा किया जो भविष्य में फिर से पार्ट प्ले करने वाला है। ये तो कॉमन बात है समझने की। बारिश बनने के लिए भी बहुत खेल चाहिए। क्या चाहिए है? बहुत अकल चाहिए। कब किसी को सपने में भी याद नहीं होगा कि मैं वारस बनूंगा भगवान का। देखते भी हो कि ये विश्व के मालिक थे कौन? किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया। देखते भी हो कि ये विश्व के मालिक थे, परंतु इन्होंने वो मालिक पना किससे लिया है? डायरेक्ट बाप से लिया? बिंदी से? शिव बाबा से लिया? लेने वाला कौन और देने वाला कौन? लेने वाले ने लिया तो किसने लिया और दिया किसने? ये विश्व के मालिक थे, परंतु वो मालिक पना किससे लिया ये भी कोई नहीं जानते। किसी को कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी है मैं आप तो सामने है, है? इनको विश्व की बादशाही किसने दी, मालिक पना किसने दिया वो कोई जानते नहीं है। और तुम्हारी है मापदंड? तुम्हारी है मापदंड सामने है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे। क्या हम चंद्रवंशी राजा रानी बनने वाले नहीं? इस्लाम वंशी बनने वाले नहीं? बौद्ध वंशी बनने वाले नहीं? हम क्या बनेंगे? सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे। कोई निकाल लक्ष्मी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना कि राम सीता बनेंगे? राम सीता की भी तो निंदा हुई है ना, तो राम सीता क्यों बनेंगे? सबका एम ऑब्जेक्ट है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शास्त्रों में राम सीता की भी निंदा है, लक्ष्मी नारायण की काब निंदा नहीं सुनेंगे। क्यों? 33 करोड़ देवताओं की निंदा है शास्त्रों में, लक्ष्मी नारायण की निंदा क्यों नहीं है? श्रीमत पर
चलता है
और कोई नहीं चलता श्रीमत पर। ऐसे पुरुषार्थ करते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम वो बनते हैं। अच्छा कृष्ण नहीं बनता है? कृष्ण बच्चा जो पैदा होता है सतयुग में वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं बनता है?
बनता है, लेकिन बहुत काल आने के बाद
लंबा हो जाता है, तो उसका काल भी लंबा हो जाता है और आपका बोल भी लंबा हो जाता है। ठीक है, माना बनते तो हैं, लेकिन वो विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। वो कहाँ के मालिक बनते हैं? वो सतयुग के मालिक बनते हैं। और शास्त्रों में कृष्ण की ग्लानि भी दी हुई है। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो ये कहां की यादगार है? संगम युग में जिन्हों जिन्हों ने भी पार्ट बजाया, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, सब की ग्लानि है। माने सब ने अधूरा पार्ट बजाया, लेकिन एक युगल ऐसा निकलता है जिसकी कोई कोई ग्लानि नहीं होती। तो वो किस समय की यादगार? संगम की। माने संगम में ही उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जैसा पुरुषार्थ और कोई ने 100% और कोई ने नहीं प्राप्ति की। लक्ष्मी नारायण की कब निंदा नहीं सुनेंगे? बिल्कुल निंदा नहीं सुनेंगे। चौथाई परसेंट भी उनकी निंदा नहीं है। शिव बाबा की भी निंदा है, पढ़ाई पढ़ाने वाले की निंदा है और पढ़ने वाले की कोई निंदा नहीं। ये क्या बात हुई? क्यों? जिसने पढ़ाई पढ़ ली उसकी कोई निंदा नहीं, और जिसने पढ़ाई पढ़ाई उसकी निंदा हो गई। ये क्या बात हो गई है? ऐसा क्यों? पढ़ाई पढ़ाने वाले ने जब पढ़ाई पढ़ाई तो जिसके तन में पढ़ाई पढ़ाई, वो पतित तन था या पावन धन था? पतित था, इसलिए उसकी निंदा होती। वास्तव में सुप्रीम सोल की कोई निंदा नहीं है। निंदा किसकी और स्तुति किसकी? साकार शरीरधारी की निंदा स्तुति होती है। आत्मा की तो कोई निंदा स्तुति होती नहीं। तो इन लक्ष्मी नारायण की निंदा करते कभी देखा नहीं होगा। निंदा की और स्तुति की नूंद कहां होती है? संगम पर होती है। तो लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मी नारायण का पद पा लेते हैं तो निंदा करने का सवाल कोई रह नहीं जाता। सच्चाई खुल जाती है कि सच्चा क्या है और झूठ क्या है। बाप कहते हैं, अब फिर मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच ऊंच बनाने आया हूं, है? इसको बनाने आया हूं तुम बच्चों को कितना ऊंच? इतना ऊंच थे ऊंच। इतना माने किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। माने पढ़ने वाले बच्चों में से ही कोई बच्चों में बाबा की नजर है, जिनके लिए कहते हैं तुम बच्चों को इतना ऊंच बनाने के लिए आया हुआ। मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं, है? मेरे से बच्चे तीखे हो जाती हैं। किसने कहा है? सुप्रीम सोल ने तो कहा, तो सुप्रीम सोल से तीखे हो जाते हैं। हाँ, ये ब्रह्मा की सोल के द्वारा शिव बाबा ने बुलवाया, या ब्रह्मा ने बोला कि मैं पढ़ाई पढ़ाने वाला हूं, मेरे मुख का आधार लिया हुआ है शिव बाबा ने, मेरे मुख से बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले तुम बच्चे हो, तो भी तुम बच्चे मेरे से भी पुरुषार्थ में तीखे चले जाते हो। मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं। इस बात को तथाकथित ब्राह्मण कहां तक मानेंगे, है? कि मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं, ये हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मण इस बात को मानेंगे कि ब्रह्मा बाबा से भी ऊंचा पुरुषार्थी कोई हो सकता है?
मानना पड़ेगा?
वो तो नहीं मानेंगे। वो अगर मानेंगे तो उनकी पढ़ाई चौपट हो जाती है, इसलिए वो तो मानने वाले नहीं। वो मानेंगे तो वो उनका पद नीचा हो जाता है, इसलिए वो तो मानने वाले नहीं है। फिर उनको मनवाएगा कौन? है? मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं, इन्हें लक्ष्मी नारायण की भी कभी कोई निंदा नहीं करेंगे। बल कृष्ण की आत्मा तो है और वो ही आत्मा है, परंतु न जानने के कारण उनकी निंदा कर देते हैं। किसकी निंदा कर देते हैं? कौन से कृष्ण की बात हो रही है यहां पर? संगमयुग कृष्ण की निंदा कर देते हैं, सत्युग के कृष्ण की तो निंदा की बात ही नहीं। सत्युग में जो कृष्ण पैदा होगा उसकी हिस्ट्री कोई शास्त्रों में है क्या? उसकी हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं, तो निंदा स्तुति का सवाल ही नहीं। संगमयुग में जो कृष्ण है वो जो पार्ट बजाता है उस पार्ट की सच्चाई को कोई जानती नहीं, और जब जान जाते हैं तो समझ जाते हैं ये तो वही नरसिंह नारायण बनने वाला है, तो निंदा करने का सवाल पैदा नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ी खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधा कृष्ण का। क्यों राधा कृष्ण का मंदिर क्यों बनाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए? खुशी से ज्यादा खुशी राधा कृष्ण के मंदिर बनाने में क्यों रहनी चाहिए? ऐसे क्यों कह दिया? क्योंकि राधा कृष्ण ज्यादा सत्व प्रधान है और लक्ष्मी नारायण का जब टाइटल मिल जाएगा तो क्या होने लगेंगे? नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। किसने बोला?
नहीं
तो ये बोला किसने?
जब संपूर्ण हो जाता है तो गिरने का टाइम शुरू होता है, बट लेकिन
ये यहाँ बोला किसने? का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं, वास्तव में बनाना चाहिए राधा कृष्ण का, क्योंकि वो सत्व प्रधान है। ये किसने बोला राधा कृष्ण का बनाना चाहिए मंदिर बड़ी खुशी से, क्योंकि वो सत्व प्रधान है? ये किसने बोला? है सुप्रीम कोर्ट ने बोला?
नहीं,
कृष्ण की आत्मा ही इस बात, क्यों उनकी बुद्धि में तो संगम होगी कृष्ण की बात है ही नहीं, वो सत्युग के कृष्ण की बात करेंगे, तो सत्युग की कृष्ण की बात करेंगे, सत्युग का कृष्ण तो जब बड़ा होगा तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो सत्व प्रधान दोनों में से कौन सा हुआ, सत्युग की कृष्ण या जब लक्ष्मी नारायण बन जाता है वो सत्यु की लक्ष्मी नारायण जो है वो गिरती कला का हो जाएगा, और जो सत्यु की राधा कृष्ण है वो सात्विक स्टेज में है, बच्चे की स्टेज में, तो उन्होंने अपनी बात लगा दी। तो वो सत्व प्रधान है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो उनकी युवावस्था हो जाती है, तो उनको सत्व कह सकते हैं, सत्व प्रधान नहीं कहेंगे, वो छोटे हैं इसलिए उनको सत्व प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान कहा जाता है, जैसे छोटे बच्चों को यहां विकार आदि का पता नहीं रहता है, वैसे वहां बड़ों को पता नहीं रहता है कि विकार क्या चीज होती है। ये पांच भूत वहां होते ही नहीं है, विकारों का तो जैसे कि पता ही नहीं। काम की चेष्टा भी रात को होती है और देवताएं तो हमेशा दिन में है, क्यों वहां रात नहीं होगी? सत्युग में रात होगी कि नहीं होगी? सत्युग त्रेता में
दिन है।
रात नहीं होगी, जब यहां इस दुनिया में भी ऐसे स्थान देखे जाते हैं जहां रात होती नहीं, महीनों तक रात नहीं होती, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और छह महीने का दिन होता है, रात भी छह महीने की हो सकती है, होती है। तो ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां 2500 साल तक अंधेरा होगा ही नहीं। देवताएं होते ही हैं दिन में, तो काम की चेष्टा की तो बात ही नहीं, विकार कोई भी होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। क्या कब चले जाएंगे? जब सतीगुरु की सवेरा होगा तो हमारे अंदर से जो भी विकार की चेष्टा है, चाहे मनसा में हो, वाचा में हो, कर्मणा में हो, वो कर्मेंद्रियों की चेष्टा सब खलास हो जाएगी। पता भी नहीं रहता है कि विकार क्या चीज होती है। ये रावण का विकारी घर है, ये है विशेष वर्ल्ड, वहां तो विकार की कोई बात ही नहीं होती है। 21 जनवरी 1967 की वाणी का तीसरा पेज। उस दुनिया को कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी इस दुनिया में है आसुरी राज्य। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि अभी आसुरी राज्य है, और ईश्वरीय राज्य को भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं कि ये इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा की, ब्रह्मा को भी याद नहीं करते। ये खुद भी कहते हैं शिव बाबा को ही याद करो, उससे ही विकर्म विनाश होंगे। और कोई को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो, पहले मैं आत्मा हूं ये पक्का करके फिर याद करना चाहिए। मेरा बाप परमात्मा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा, मैं सबको सुख देने वाला हूं, मैं ही सब आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं। क्या सब क्या बात साबित हुई इस बार की से? मैं ही सब आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं, इससे क्या साबित हुआ? कुछ साबित हुआ कि नहीं? क्या
शिव बाबा ही वो शांति धाम को लेने वाला?
वही तो बोला गया है, तो नई बात क्या साबित हुई जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते?
ब्रह्मा के द्वारा नहीं
हुआ। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा नहीं ले जाता हूं, विष्णु के द्वारा नहीं ले जाता हूं। झाड़ के चित्र में त्रिमूर्ति में से एक ही मूर्ति को दिखाया गया है कि वो सब आत्माओं के साथ वापस परमधाम जाती है। तो मैं ही सब आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं, ये मैं ही कहने वाला स्वरूप कौन है? कौन सी मूर्ति है जो ये बात बोलती है? झाड़ का चित्र सामने रखा जाए और बाबा का ये महावाक्य रखा जाए तो क्या साबित हो जाएगा? कि शंकर की ही मूर्ति है जो सब आत्माओं को वापस परमधाम ले जाने का कार्य करती है। इस संबंध में महावाक्य कौन सा बोला गया है? मैं तुम बच्चों को आंखों पर बिठा कर ले जाता हूं। क्या नाक में बिठा के नहीं ले जाता हूं? कैसे ले जाता हूं? आंखों पर बिठा, इससे क्या मतलब हुआ? माने ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि होगी कि सारी दुनिया हमको भूल जाएगी, दुनिया में कुछ भी हमको याद नहीं आएगा, दुनिया से बुद्धि डिटैच हो जाएगी। और आंखों पर बिठा के ले जाने का एक और भी अर्थ है, इतनी प्यार की दृष्टि होगी इतनी आकर्षणमयी दृष्टि होगी कि और हमें कुछ याद करने की दरकार रहेगी ही नहीं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वो ही आकर के जरूर वर्षा लेंगे। क्या ये दृष्टि से सृष्टि सुधारने का वर्षा बाप से जिसने जिसने लिया होगा कल पहले वो ही आकर के लेंगे और दूसरे आकर के लेंगे भी नहीं। ब्राह्मण वही बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कोई कच्चे होते हैं कोई पक्के होते हैं, कोई मातेले होते हैं कोई सौतेले होते हैं। मातेले भी बनेंगे सौतेले भी बनेंगे। और हम तो निराकारी शिववंशावली के हैं। जानते हो बरादरी कैसे बदलती है। अब ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। कब जाना है? ब्राह्मण बनने के बाद। ब्राह्मण बनने के बाद क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। अभी आत्माओं को शरीर छोड़ वापस जाना है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। क्या ऐसे नहीं कि पांडव चले जाएंगे और कौरव रह जाएंगे? नहीं, दोनों को वापस शांति धाम जाना है और दोनों को देह बन छोड़ना है। लेकिन अंतर क्या होगा? हाँ, वो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे और वो तकलीफ में शरीर छोड़ेंगे, हाहाकार में छोड़ेंगे। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो। तुम जब शरीर छोड़ करके जावेंगे तो संस्कार कौन से ले जावेंगे? अंत मते सो गते। और अंत में मते कौन सी होती है? नहीं, अंत में वही मति होती है जो सारा जीवन प्रैक्टिस की जाती है। अभी बीके वाले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्ञान की बात हो रही है। अभी बीके वाले भी अपने तरीके से ज्ञान धारण कर रहे हैं और पीवी के वाले भी अपने तरीके से ज्ञान धारण कर रहे हैं। ज्यादा ज्ञान के संस्कार किस में बन रहे हैं? एडवांस वालों में ज्ञान के संस्कार बन रहे हैं। और वो जो तथाकथित ब्राह्मण है वो ज्ञान की बातों में इतना रस नहीं लेते। तो ये संस्कार पक्के हो रहे हैं ना। तो अंत मते सो गते, ये ज्ञान के संस्कार कौन ले करके जावेंगे? जो एडवांस के जो बच्चे सूर्यवंशी बच्चे हैं वो निश्चित रूप से ज्ञान के संस्कार साथ में लेकर के जाएंगे और ज्ञान के संस्कार परमधाम तक लेकर के जाएंगे, आत्मा में नूद करके ले जाएंगे। तो जब वापस आवेंगे तो क्या करेंगे? वही ज्ञान के संस्कार लेकर के आवेंगे और फिर द्वापर युग में शास्त्र तैयार करें। द्वापर युग के आदि में जो शास्त्र बने थे उनमें भी बहुत कुछ सच्चाई थी। बाद में जब इंटरप्रिटेशन हुआ और गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया कृष्ण के भक्तों ने, तो फिर सारा ज्ञान हो गया। तो तुम ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे और वो क्या करेंगे? वो अज्ञान का संस्कार ले जाएंगे। तो वो जब आवेंगे तो फिर अज्ञान फैलावेंगे। माना ज्ञान किससे आता है और अज्ञान किससे आता है? एक राम बाप से आता है ज्ञान और बाकी सब देवधारी गुरुओं से आता है अज्ञान। उसमें कृष्ण की सोल भी आ जाती है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो फिर इस अनुसार तुम प्रारब्ध पाते हो। वो भी ड्रामा विनोद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर अभी ज्ञान मिला है। क्या कहा? किसने कहा और किसको कहा? क्या कहा? किसने कहा और किसको कहा? शिव बाबा ने कहा। और जो बच्चे पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनके लिए बोला कि तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब 84 जन्मों के बाद फिर अभी तुमको ये ज्ञान मिला। 84 जन्म लेने के बाद ये ज्ञान जो तुमको अभी मिला है ये प्रायः लोप हो जाएगा, माना पूरा पूरा लोप नहीं होगा। कौन कौन सी आत्माओं में से लोप हो जाएगा और कौन कौन सी आत्माएं ये ज्ञान के संस्कार परम धाम में भी ले जाएंगी? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले 4.5 लाख है वो ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, हैं तो उनमें भी नंबर वार क्या 50-50 हजार समझ लो, हर धर्म के बीज है ना, तो सब धर्मों के जो बीज हैं वो एक जैसा ज्ञान तो नहीं उठावेंगे, क्यों उठावेंगे नहीं। जो 50 हजार सूर्यवंशी है और 50 हजार चंद्रवंशी है वो ही ज्ञान के संस्कार उठावेंगे, और बाकी दूसरे धर्म के वो अज्ञान फैलाने वाले हैं कि ज्ञान फैलाने वाले हैं? मूल रूप में वो भी अज्ञान फैलाने वाले। तो बोला ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तो प्रायः लोप करने के लिए जो निमित्त बनते हैं वो कौन हुए, और उस ज्ञान को लगातार चालू रखने वाले कौन हुए? प्रायः लोप हो जाने का मतलब पूरा लोप नहीं होता है, तो कोई आत्माएं तो ऐसी निमित्त बनती है जो ज्ञान को चालू रखती है, और कोई आत्मा ऐसी होती है उस ज्ञान को बिल्कुल भूल जाती है, तो कौन भूलेंगे? जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान को ठुकराया होगा, ज्ञान रत्नों को ठोकर मारी होगी वो तो भूल जाएंगे, और जिन्होंने बाप की मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार किया होगा उनके अंदर ज्ञान के संस्कार रह जाएंगे। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, सत्युग में भी लोप हो जाएगा, वहां भी तुम प्रारब्ध भोगते हो ज्ञान की। यहां कोई और धर्म वालों के चित्र नहीं रहते, होना चाहिए वहां, कहां वहां सत्युग में और धर्म वालों के चित्र नहीं रहते हैं। कौन से धर्म वालों के रहते हैं? आज सनातन देवी देवता धर्म वालों के चित्र रहते हैं। कौन सा चित्र रहता है मुख्य रूप में? लक्ष्मी नारायण का या विष्णु चतुर्भुज का चित्र रहता है। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, सत्युग में किसी का चित्र आदि नहीं रहता है। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं माना द्वापर युग से आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक जब तक दुनिया खलास हो तब तक तुम्हारे चित्र ऑलराउंड रहते हैं। दूसरे देवी देवताओं की कोई गारंटी नहीं है कि उनके चित्र पूरे भक्ति मार्ग में ऑलराउंड रहते हो या सत्युग त्रेता में भी रहते हो। ऑलराउंड किसके रहते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र ऑलराउंड रहते हैं, सत्युग में भी होता है, त्रेता में भी राम सीता का चित्र होता है, द्वापर में भी लक्ष्मी नारायण का राम सीता का चित्र होता है, शंकर का चित्र होता है, और कलयुग में भी होता है। तो किनका नहीं होता है और किनका होता है? जिनका होता है तो मालूम पड़ गया, होता किसका नहीं है ऑलराउंड चित्र है? वो कौन है? वो दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले बीज या आधारभूत जड़े कौन है? जिनका चित्र नहीं होता है वो देव, वो चित्र वाले देवता है कौन है? हाँ, कृष्ण का चित्र सिंगल वो द्वापर के अंत में आता है, और जितने भी देवी देवताएं सिंगल पूजा लेने वाले हैं या जानवरों का रूप धारण किए हुए हैं उनके भी चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में भी नहीं होते, और 5000 वर्ष भी उनके चित्र नहीं बनाए जाते। तो तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते, तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं होता है। और कोई का माने क्राइस्ट का चित्र वहां हो, मोहम्मद का चित्र हो, गुरु नानक का चित्र हो, बुद्ध का चित्र हो, ऐसे कोई चित्र वहां रहते नहीं है, सिर्फ देवताएं ही रहते हैं, और दूसरे धर्म वालों के कोई भी चित्र वहां होते नहीं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। किससे है सत्युग त्रेता में कौन सा धर्म है वो किससे समझा जाता है? लक्ष्मण का ही चित्र वहां होता है, राम सीता का ही चित्र होता है, इससे समझा जाता है कि वो आदि सनातन देवी देवता मुक्ति मार्ग का धर्म है। वहां द्वापर कलयुग में ये टूट जाती है परंपरा। इस ज्ञान को स्मरण करके अतीन्द्रिय सुख में रहना है। जो यहां जितने ज्ञान के संस्कार धारण करते हैं उतना ही जास्ती भविष्य में जब प्रारब्ध प्रत्यक्ष होगी तो अतीन्द्रिय सुख के संस्कार उनमें देखने में आ रहे हैं। ज्ञान नहीं होगा तो अतीन्द्रिय सुख के संस्कार भी अनुभव नहीं कर सके। बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझते हैं कि इन पॉइंट्स को माया घड़ी घड़ी बुला देती है। एक तो ये याद रहना चाहिए शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे, क्या हमको पढ़ाए रहे, तुमको नहीं पढ़ाए रहे? शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं, इनको नहीं पढ़ाए रहे हैं, उनको नहीं पढ़ाए रहे हैं, हमको पढ़ाए रहे हैं, इनको भी नहीं पढ़ाए रहे हैं, उनको भी नहीं पढ़ाए रहे, किनको पढ़ाए रहे? हमको पढ़ाए रहे, इनको नहीं पढ़ाए रहे इसका मतलब क्या हुआ, और उनको नहीं पढ़ाए रहे उनको इसका मतलब क्या हुआ? इनको माने ब्रह्मा की तरफ इशारा करते हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स ये हमारे नजदीकी रहने वाले चंद्रवंशी है ना, इनको नहीं पढ़ाए रहे, इसलिए मुरली में बोला भी है मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है, माना मैं इसे बात भी नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी ये बीच में टांगड़ा में सुन लेता है, क्यों नहीं बात करता हूं? अरे बात किससे की जाती है? जो काम पूरा करे उससे बात की जाएगी, जिससे काम पूरा होने की आशा ही ना हो तो उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं तुमसे बात करता हूं, इससे बात भी नहीं करता, इसके तन में आकर के सुनाता हूं लेकिन तुमको सुनाता हूं, इसके कान भी सुनते हैं, सबसे पहले इसी के कान सुनते हैं, इसके कान बहुत बड़े बड़े महारथी है, हाथी रूपी हाथी के कान बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, और कोई जानवर इतना बड़ा नहीं है जिसके इतने बड़े हाथ कान दिखाते हो, माथा भी बहुत चौड़ा और कान भी बहुत लंबे चौड़े, और बुद्ध रूपी पेट भी बहुत लंबा चौड़ा। तो तुमको ये याद रहना चाहिए, चाहिए माना इतना फकुर रहता नहीं है किस बात का, इतना नशा रहता नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, न ब्रह्मा को पढ़ाते हैं, न ब्रह्मा मुगवंशावलियों को पढ़ाते हैं, न चंद्रमा को पढ़ाते हैं, न चंद्रमा चंद्रवंशियों को पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? हमको पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पढ़ाते, उनको माने किनको? इनको माने ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के पास जो भी बच्चे बैठे हैं उन सबको, और उनको, उनको माने जो द्वापर युग से आते हैं, जो आते ही नहीं है, उनको नहीं पढ़ाते, वो है ऊंचे ऊंचे भगवान जो हमको पढ़ाते हैं। क्या वो है ऊंचे ऊंचे भगवान?
ये नहीं है,
ये ऊंचे ऊंचे भगवान नहीं है। कौन? ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाने वाला है वो ऊंचे ऊंचे भगवान का पाठ नहीं है, वो है
सिर्फ देवता है।
वो है ऊंचे ऊंचे भगवान। ऊंचे ऊंचे शब्द क्यों लगाया? क्योंकि साबित हो जाए कि ऊंचे ऊंचे और नीचे नीचे इस दुनिया की बात है। क्या इस दुनिया में ही ऊंचे होते हैं, इस दुनिया में ही नीचे होते हैं? भगवान तो अपने को बहुत कहलाते हैं, कितने ढेर भगवान है दुनिया में, भगवान कहलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे भगवान वो हमको पढ़ाते हैं। कितना नशा चढ़ाते हैं तो भी नशा गायब हो जाते हैं। हमको अब वापस घर जाना है। क्या पढ़ाते तो है हमको ऊंचे ऊंचे भगवान, तो ज्यादा ही नशा चढ़ जाए। क्या क्या ऊंचे ऊंचे भगवान की पढ़ाई पढ़ करके बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं? ऊंचा पद मिलेगा तो ऊंचा मान मर्तबा होगा, ऊंचा मान मर्तबा होगा तो फिर हम बहुत सुखी रहेंगे। तो इस दुनिया के सुखों में ही बुद्धि चली जाए, इसलिए फिर याद दिला देते हैं तुमको अब वापस घर भी जाना है। अच्छा, पहली पहली बात गीता को सिद्ध किया तो सब शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे। क्या सिद्ध करना है गीता में? गीता सब धर्मों का माई बाप है, गीता की मान्यता, गीता का भगवान जो नाम डाला हुआ है वो नाम रूप डालने से गीता का महत्व खंडित हो गया। अगर सबकी बुद्धि में ये होता कि गीता कोई निराकारवादी रचना है तो सारी दुनिया गीता को मानती, लेकिन उसमें साकार का नाम डाल दिया तो दूसरे धर्म के लोग गीता को मानते नहीं है, तो कितना बड़ा घाटा हो गया भारतवासियों को। अब बाप कहते हैं ये भूल दूर करो, ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान ऊंचे ऊंचे निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जो सब निराकारी स्टेज वाले धर्म पिताओं का भी बापों का भी बाप है। ये बात तुम अगर सिद्ध करेंगे तो सब शास्त्र झूठे हो जाएंगे। झूठे शास्त्र हमको सुनने ही नहीं है, तुम तो सच्चे बाप थे, सच्ची गीता सुनते हो, बाकी मनुष्यों की बात सुननी नहीं है, है? क्या हम सच्चे बाप से सच्ची बातें सुनते हैं तो दुनिया में जो झूठे मनुष्य हैं हम उनकी बातें सुने ही क्यों? वो सब नुकसान करने वाली बातें हैं। मनुष्य गुरुओं ने जो कुछ सुनाया या मनुष्य गुरु जो भी अभी सुना रहे हैं वो सब बातें हैं नुकसान करने वाली बातें, जो भी शास्त्र आदि सुनाते हैं वो है भक्ति मार्ग के। कभी भी कोई पूछे तुम शास्त्र पढ़ते हो, बोलो ये सब शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं, हमने 2500 साल भक्ति की है। क्या ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं और भक्ति मार्ग में हमने 2500 साल ये शास्त्र ही पढ़ने का धंधा किया है? लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते थे तो हमें भगवान नहीं मिला, और अभी मिला, अभी हमको भगवान मिला हुआ है। जब हमको भगवान ही मिला हुआ है तो हम ये शास्त्र क्यों पढ़े? जिन शास्त्रों को पढ़ने से 2500 वर्ष की हिस्ट्री में मनुष्यों की दुर्गति होती चली आई, ज्ञान का सागर तो एक परम पिता परमात्मा ही। कहते भी है ज्ञान सूर्य प्रकट अज्ञान अंधेर विनाश, अंधेरा रात को कहा जाता है, क्या कहा है? अंधेरा रात को कहा जाता है। अंधेरा कौन बनाते हैं और सवेरा कौन बनाते हैं? दिन कौन बनाता है और रात कौन बनाता है? गाते तो है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, लेकिन ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है? या ब्रह्मा ही अपनी रात को दिन बना लेता है? है? कौन बनाता है? ब्रह्मा की दिन को ब्रह्मा की रात कौन बनाता है और ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है? है? अच्छा, ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है और ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात कौन बनाता है?
ब्रह्मा ही
है। यज्ञ के आदि में भी तो ज्ञान सूर्य आया था, आया कि नहीं आया? आया। तो ज्ञान सूर्य को किसने अप कर लिया? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं हनुमान ने क्या किया। हनुमान ने सूरज को फल समझ करके मुंह में रख लिया, सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। फिर ये कब की बात है, शूटिंग कहां हुई, कब हुई शूटिंग? ये की आदि में जो ज्ञान सूर्य था, जिस ज्ञान सूर्य से ब्रह्मा की सोल को भी उजेला मिला, रोशनी मिली ना, तो सवेरे की शूटिंग तो हुई ना उनकी, लेकिन फिर उल्टा काम क्या कर दिया, अप कर लिया, खुद ही सारा ग्रहण कर लिया, तो दुनिया में अंधेरा छा गया। और यह अंधेरा कब तक रहा है? नहीं, सन 36 में ज्ञान सूर्य प्रकट है और उसके बाद शरीर छोड़ दिया, ज्ञान सूर्य छिप गया, ब्रह्मा की सोल को माने हनुमान को प्राप्ति हो गई। और वो प्राप्ति उस समय जब हो गई तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हिरोशिमा नागासाकी का जब बाहरी युद्ध हुआ तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी युद्ध हुआ, अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होता है युद्ध का? विनाश भी एक तरफ होता है, तो किसका विनाश हो गया? है? सूर्यवंशियों का विनाश हो गया, सूर्य गड्ढे में चला गया, पाताल में चला गया, और दूसरे दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं थी वो सब ऊपर आ गई, और जो ऊपर आ गई उन्होंने फिर मॉडल बनाया, काहे का मॉडल बनाया, स्वर्ग का मॉडल बनाया। आज भी मायावी धर्म जितने भी हैं, वो मायावी धर्म सब इकट्ठे होकर के दुनिया को क्या बना रहे हैं? स्वर्ग का मॉडल बना रहे हैं, असली स्वर्ग तो नहीं बना रहे, मॉडल है, लेकिन अंदर से उसमें कोई सुख सुख नाम की चीज नहीं है। ये जो मॉडल बनाने का कार्य है भक्ति मार्ग में भी होता है। जो गुरु गुसाई है वो ऋषिकेश में उन्होंने एक स्वर्ग आश्रम बनाया हुआ है, उसका नाम रखा है स्वर्ग आश्रम। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उनको फॉलो करते हैं, क्या बनाया है? सुखधाम, शांति धाम। और भक्ति मार्ग में फिर यादगार चलती है अजमेर की, बनाने वाले कौन होते हैं? वो भी धर्मी, भेड़ बकरियां पालने वाले, भेड़ बकरी बना जहाँ एक कदम बढ़ाएगी बिना सोचे समझे दूसरे भी उसे पीछे पीछे चल पड़ेंगे, दिमाग बिल्कुल लगाने वाले नहीं है। तो अंधेरा रात को कहा जाता है, रात रावण बनाते हैं। कौन बनाता है? रात रावण बनाता है रात, और राम बनाते हैं दिन, राम बनाते हैं। रात है भक्ति और दिन है ज्ञान। अब टैली करो, ब्राह्मणों की दुनिया में कहां भक्ति चल रही है और कहां ज्ञान चल रहा है? बीके में चल रही है भक्ति और एडवांस में चल रहा है ज्ञान। बीके में जो भक्ति चल रही है वो भक्ति की रात किसने बनाई? निमित्त कौन बना? रावण, ब्रह्मा। टैप करो जरा। ब्रह्मा को रावण कहते हैं ऐसे तो शास्त्रों में भी आया, और रावण और ब्रह्मा क्या शास्त्रों में भी एक वाक्य आया हुआ है, रावण और ब्रह्मा, माने ब्रह्मा से भक्ति की रात आती है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। प्रजापिता के लिए कभी कहते हैं प्रजापिता की रात और प्रजापिता का दिन?
नहीं।
क्यों? क्योंकि प्रजापिता माना राम की सोल, राम की सोल कभी राती में रात्रि में आती ही नहीं, वो दिन में ही है। जब से जन्म हुआ तब से लेकर के अंत तक उसको अज्ञान रात्रि में जाना ही नहीं, अनिश्चय बुद्धि होना ही नहीं। तो दिन राम बनाते हैं, रात भक्ति रावण बनाते हैं। दिन ज्ञान को कहा जाता है, जहां ज्ञान है वहां दिन है, जहां दिन है वहां सूर्य है, सूर्य है तो सूर्यवंशी बच्चे है, और जहां रात है वहां रावण, जहां रात है वहां रावण है, और जहां रावण है वहां भक्ति है, भक्ति है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो दुर्गति है, ज्ञान से सदगति और अज्ञान से दुर्गति। दिन ज्ञान को कहा जाता है, कितनी सहज बातें बताते हैं, सारा मदार है याद पर। किस बात का मदार? ज्ञान और अज्ञान का कंट्रास्ट समझने के लिए सारा मदार याद की यात्रा पर है। हमको देवता बनना है, कैसे देवता बनना है? याद से अपने पाप कर्मों को भस्म करके देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। याद करने से क्या होगा? पाप कर्म तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन देवता कैसे बनेगी? दैवी गुणों को धारणा करेंगे तो हम देवता बनेंगे। पांच विकार भूत हैं, क्रोध का भूत, देहाभिमान का भूत, कोई में जास्ती भूत होता है कोई में कम होता है। क्या जास्ती किस में होगा और कम किस में होगा? ज्ञान में आने के बाद जास्ती भूत किस में होगा और कम किस में होगा? अरे ज्ञान मिल गया, बाप को पहचान लिया, तो ज्ञान में आने के बाद भूत कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? फिर कोई कोई में तो और ज्यादा निकल पड़ता है।
अमृत वेला
सुधारने से सुधर जाता है। दूसरे गिरती कला के धर्म है, उनमें जो आत्मा कन्वर्ट होती है, भले वो परमात्मा बाप को पहचान लेवे, ज्ञान में भी चल पड़े, निश्चय पत्र भी लिख करके देवे, तो भी अनेक जन्मों के उनके संस्कार हैं, विकार भोगने के, तो संसार उनके जल्दी खलास नहीं होंगे। और जिनके अनेक जन्मों के संस्कार हैं देवी बनेगी देवताई, वो जल्दी छोड़ देती, उनको कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। तो तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये भूत हैं, ये भूत निकल जाना चाहिए। भूत निकालना भी बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को रंजाता रहता है, मोह में बहुतों को रंज नहीं होता है। क्या? मोह में बहुतों को रंज नहीं होता है। रंज माना अंदर अंदर दुखी होना, और क्रोध में बहुत एक दूसरे को रुलाते हैं। जिनको मोह है उनको ही रंज होगा, और क्रोध होता है तो क्रोधी भी उसको भी रंज होता है, और जिसके ऊपर क्रोध करता है उसको भी रंज होता है, और दो की लड़ाई के बीच में जो देखने वाले हैं उनको भी दुख होने लगता है। इसलिए बाप समझाते हैं भूतों को भगाओ, पढ़ाई पर अटेंशन देना है और जैविक गुणों पर भी अटेंशन होना चाहिए। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, और कोई तो फिर क्रोध में आकर बहुत लड़ते झगड़ते। क्या बात हुई? वो कौन से बच्चे हैं जिनमें क्रोध का अंश भी नहीं है? क्रोध का अंश होगा तो काम का अंश जरूर होगा। कोई अपने क्रोध को छुपाए लेते हैं, लेकिन क्रोध को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। क्रोध फट से बाहर आ जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो क्रोधी है ये जरूर कामी भी होगा। कब गुस्से से बात नहीं करना चाहिए? कोई गुस्सा करते हैं तो समझना चाहिए इस समय क्रोध का भूत है। और अव्यक्तवाणी में तो बहुत खतरनाक बात बोल दी, कोई में क्रोध आता है तो उस समय क्या समझना चाहिए? है? क्रोध आने वाले को जिसमें क्रोध आता है उसे क्या समझना चाहिए? नहीं, ये तो अभी बात बताई मुरली में। नहीं, कामी वो भी मुरली में बात बताई, अव्यक्तवाणी में एक और बात बताई, बताया जिसमें क्रोध का भूत आता है उसे उस समय समझना चाहिए कि मैं चांडाल बनने वाला हूं। पहले नहीं बताया, और अब इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद बता रहे हैं कि इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी अगर किसी को क्रोध आता है तो आप उसका रिजल्ट क्या होगा? क्रोधी बनता है, माना चांडाल बनता है, चांडाल बनने की शूटिंग करता है। क्रोध जैसे भूतनाथ भूतनाथ नहीं बनाई देता है, ऐसे भूत वालों से कब बात नहीं करना चाहिए? क्या एक ने क्रोध में आकर के बात की तो दूसरे में भी भूत आ जाता है, तो दो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथ और भूतनाथिनी अक्षर ये बड़ा छीछी अक्षर है, ऐसे भूत की कहीं प्रवेशता ना हो जाए। कैसे भूत की है? जिसका नाम पड़ता है भूतनाथ और भूतनाथिनी। भूतनाथिनी किसका पार्ट है? हर कोई भूतनाथिनी होती है नहीं? कौन होती है? जो महाकाल है वो महाकाली भी है, साथ में भूतनाथ है तो साथ में भूतनाथिनी भी है। ओम शांति।